सौंप कर सब चिंता फिकर तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खिवैया हम हो गए बेखबर खिवैया मेरी नैया हवाले तेरे हवाले ये सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर।
ओम शांति। आज हमारे बीच में आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी पधारे हैं। इस भक्ति की क्लास में हम एक हाथ की ताली से भ्राता जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने ये ईश्वरीय ज्ञान 1962 में प्राप्त किया, साकार बाबा की आपने पालना भी ली। 28 वर्षों तक ONGC में आपने लौकिक नौकरी भी की और 1996 में आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और बाबा के इस बेहद यज्ञ में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। आप बिहार, आसाम और गुजरात अनेक स्थानों पर सेवा केंद्र खोलने के भी निमित्त बने। आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी मेंबर भी हैं एंड साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपको अनेक अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिसमें एक अवार्ड है आपको पर्यावरण श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1992 में और 2013 में ग्रीन आइडल अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। और इस तरह से दुनिया में भी आपने बाबा को प्रत्यक्ष किया। ऐसे बहुरूपी प्रतिभा के धनी आदरणीय भ्राता जी आज हम सबके समक्ष एक बहुत सुंदर विषय पर क्लास कराने आए हैं, कर्मेंद्र जीत प्रकृति जीत हम कैसे बने। अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता जी से।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिल करके इस रीति से ओम शांति कहेंगे, जैसे कि यज्ञ के आदि में बाबा के साथ सारे ब्राह्मण वत्स कहा करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ शांति की यह मधुर ध्वनि ही वास्तव में हम सबको कर्मेंद्रिय जीत और विकर्मा जीत बना देती है। इस शब्द का उच्चारण तो दिन में हम सब बहुत बार करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं, बाहर जाते हैं, सुबह उठकर ही बाबा से ही गुड मॉर्निंग ओम शांति करते हैं, और कहीं पर भी आना जाना कुछ भी होता है ओम शांति कहते हैं। लेकिन इस शब्द के अर्थ में स्थित होना ही वास्तव में हमें कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बनने के लिए प्रेरित करता है। कर्मेंद्रिय जीत के लिए तो हम प्रतिदिन रोज मुरली सुनते हैं, और मुरली सुन करके उसको जीवन में यथासंभव धारण भी करते हैं। आज की मुरली में क्या ऐसी मुख्य बात थी जो कि बाबा ने हम बच्चों को बताई है? कौन सी मुख्य बात? आज तो सबने मुरली तो सुनी ना, है ज्ञान अविनाशी है, बीज अविनाशी है, और बीज फलीभूत कोई चला भी जाए लेकिन बीज अविनाशी है तो वो लौट के आएगा ही, क्योंकि राजधानी में उसको पार्ट प्ले करना है। और आज बाबा ने एक बात कि यहां पर हम जितना जीवन बंद अवस्था से पार होते चलेंगे उतना ही वहां पर सतयुग में कौन सी अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। बहुत बड़ी बात है, हम सभी जीवन मुक्त तो हैं या सतयुग में सभी हैं, लेकिन सब नंबर वार जीवन मुक्त अवस्था में है। हरेक की जीवन मुक्त अवस्था अपनी अपनी है, तो इसीलिए यहां पर जैसी जिसकी जीवन बंद अवस्था से मुक्ति हुई होगी उतना ही वहां पर वो जीवन मुक्त अवस्था का और अनुभव करेगा। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम सभी का पुरुषार्थ उस अंतिम एक क्षण के लिए हो रहा है। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं उस अवस्था के लिए हो रहा है जब हमारे प्राण स्तन से निकलेंगे, जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, क्योंकि गायन ही है। क्या गायन है? अंतमते सोगति का गायन। तो अंत में जैसी हमारी मति होगी, जैसी हमारी बुद्धि की स्थिति होगी, वैसी ही हमारी गति होगी, सदगति होगी। तो हमें ये देखना है हमारा सारा पुरुषार्थ का कंसंट्रेशन उधर ही हो कि अंत में मेरे प्राण जब निकले उस समय मेरी स्थिति ऐसी हो कि और कोई भी मेरी बुद्धि में ना हो। और इसीलिए बाबा ने कर्मेंद्रिय जीत के साथ जो मुख्य प्रकृति जीत बात कही है वो बहुत बहुत जरूरी है। कर्मेंद्रिय जीत तो हम पहले दिन से ही बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, जब से ज्ञान में आए हैं तो बाबा ने जो ज्ञान बता दिया है, तो ये हमारी स्थूल कर्मेंद्रिया, आंख नाक कान हाथ मुंह, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, एक एक कर्मेंद्री हमें उस बात की ओर इंगित करती है। आंख से हम क्या देखें बाबा ने जो बताया है, कान से क्या सुनना है, मुंह से क्या बोलना है, और ये ही हमें कर्मेंद्रिय जीत बनाता चलता है। लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक जो है, इससे तो हमारा जीवन, प्रारंभिक जीवन सुधरता जाता है, हम सच्चे ब्राह्मण बनते जाते हैं। हम कौन से, किस धर्म के हैं? हमारा धर्म कौन सा है? हाँ, कल परसों ही बाबा ने मुरली में बोला ना, कौन सा धर्म है? पूरा नाम बोलो, आदि सनातन, अभी तक हम क्या बोलते थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम हैं बोलते थे ना, लेकिन कल परसों बाबा ने क्या कहा, ये कहना भी रॉन्ग है, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं है, हम कौन से आदि सनातन ब्राह्मण धर्म के यहाँ हैं और सतयुग में हम होंगे आदि सनातन देवी देवता। देखो नई बात है ना, अभी तक तो बाबा हमेशा से ही मुरली में ये कहते आए हम सबका धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और रोज मुरली सुनते हैं तो रोज कुछ न कुछ नई पॉइंट होती है। और बाबा ने माया के लिए भी क्या कहा, माया और भगवान में एक गुण कॉमन है, कौन सा, हाँ करण करावन हार, बाबा भी करण करावन हार है तो माया भी करण करावन हार है। कैसे है करण करावन हार माया, बाबा तो करण करावन हार ठीक है करता भी है, हम बच्चों से कराता भी है, माया कैसे है करण करावन हार, भूल कराते, भूल तो हम करते हैं ना, हाँ और माया, माया में माया कराती है ठीक है, माया में और विघन में, कोई विघन आता है ना, कई बार हम कह देते हैं क्या करें माया आ गई, लेकिन विघन में और माया में क्या अंतर है, बहुत अच्छा है, सहज सूक्ष्म अंतर है, विघन जो है वो बाहर से आता है और माया अंदर से आती है, तो जब विघन आ जाता है ना तो हम कोई भी समस्या आई प्रॉब्लम आई तो हम कह देते हैं क्या करें माया आ गई, लेकिन वो माया नहीं होता वो विघन होता है, लेकिन उस विघन को अगर हमने सफलतापूर्वक पार नहीं किया तो वो विघन जो संकल्प विकल्प चलाता है वो फिर कमजोरी अंदर से आती है और वो फिर माया का रूप धारण कर लेती है। तो इसीलिए ये बात किस लिए बोल रहे हैं कि जो कर्मेंद्रिय जीत है जो बाबा ने बताया, वो कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ हमें क्या बनना है, प्रकृति जीत। और प्रकृति जीत का उदाहरण अभी हमारे सामने कौन है, कौन है प्रकृति जीत का, कर्मेंद्रिय जीत के तो हम सभी उदाहरण है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति जीत का उदाहरण हमारे सामने कौन है, ब्रह्मा बाबा, साकार में तो ब्रह्मा बाबा चले गए, नहीं साकार में, सूक्ष्म में तो हमारे साथ है ही है बाबा, लेकिन मुझे याद आता है 31 दिसंबर 1999 का दिन, अगले दिन से 2000वां साल शुरू होने वाला था, दादी जी अहमदाबाद लोटस में थे, दादी जानकी जी, और 31 दिसंबर को तो बाबा आते हैं, तो दादी जानकी वहां पर थे, बहुत तबीयत खराब थी दादी जानकी की, सब डॉक्टरों ने बहुत हैंड्स अप कर दिया था, वहां से जयंती बहन भी लंदन से उनको भी समाचार दे दिया गया था, वो भी आ गए और बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन थी, यहाँ पर बाबा आए हुए थे मधुबन में शांति वन में, तो बाबा को दादी जी ने बताया, दादी प्रकाशमणि जी निर्वैर भाई आदि ने, कि बाबा दादी जानकी की तबीयत तो बहुत खराब है, बहुत सीरियस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो बाबा ने क्या बोला, बाबा ने कहा कुछ नहीं बच्चे, दादी तो प्रकृति जीत आत्मा है और इसीलिए कुछ नहीं होगा और ठीक हो जाएगी, बस एक अक्षर ही बाबा ने बोला था जो सब डॉक्टरों ने और लंदन के भी डॉक्टर ने भी बोल दिया था, तो बाबा ने एक अक्षर बोला और दादी बिल्कुल खड़े हो गए। और आज देखो 18 साल भी बीत गए उसके बाद, अभी भी दादी जानकी कितनी एक्टिव है। कहां लंदन गए थे, फिर वहां से रशिया गए, उधर से आए दिल्ली, उसी दिन ही मुजफ्फरपुर चले गए, फिर दादी आए यहाँ पर। और आजकल तो अधिकतर मॉर्निंग क्लास दादी ही कराते हैं, काफी कराई। तो वो प्रकृति जीत कैसे बने, उस पर आज हम लोग और थोड़ा सा आपस में विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको भी प्रकृति जीत बनना है। जीत का मतलब प्रकृति के ऊपर हमारे कंट्रोल हो, विजय हो। दूसरे शब्दों में इसका क्या मतलब, प्रकृति अर्थात ये पांच तत्व, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये जो पांच तत्व हैं, इन पांच तत्वों से बना हमारा ये शरीर है। तो इस शरीर पर हमारा पूरा का पूरा नियंत्रण हो, प्रकृति जीत, हम जब चाहें अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। ऐसे नहीं कि बीमारी आई या कोई ऐसे आर्ट फेल हुआ या कोई अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, कोई सुनामी आई, उसमें सब मरे, हम भी अगर उसमें मर गए तो दुनिया में और हमारे में अंतर ही क्या हुआ। हम प्रकृति जीत होकर के शरीर छोड़े, अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, जैसा भीष्म पितामह का गायन है, अपनी इच्छा से। और वो ब्रह्मा बाबा ने, हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी इच्छा से वो शरीर छोड़ा। और इच्छा से तो अब हमें भी जितना जितना हम कर्मेंद्रिय जीत बनते जाएंगे, कर्मेंद्रिय जीत में भी विशेष किस पर हमें विशेष ध्यान देना है, कर्मेंद्रियां तो ये सभी हैं, लेकिन एक कर्मेंद्रिय जीत बन गए तो बाकी सब कर्मेंद्रिय जीत अपने आप बन जाएंगे। कौन सी एक कर्मेंद्रिय पर विशेष ध्यान दिया? आंख, और आंख से भी सूक्ष्म, ये क्योंकि ये स्थूल कर्मेंद्रियां हैं जो पांच है, आंख नाक कान स्पर्श मुंह ये सब, लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्री कौन सी है? मन। तो मन पर भी जितना ध्यान जैसे देंगे, और मन जीते जगत जीत इसीलिए कहा गया है। तो मन की ये जो कर्मेंद्री है, ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे मन रूपी इंद्रिय को जीता, कैसे जीता? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी जब ज्ञान में 1936-37 में आए तो बाबा ने देखा ये मन मेरा बहुत भागता है, ज्ञान भी हो गया मैं आत्मा हूं लेकिन मन भागता है, जब भी ध्यान लगाने बैठते हैं मन भाग जाता है। तो फिर बाबा ने क्या किया, क्या किया सुना होगा ना, बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? उस पत्र की कॉपी हम लोगों को दी गई थी, दादा आनंद किशोर होते थे, उन्होंने उसे सिंधी से हिंदी में ट्रांसलेट करके हम पुराने भाइयों को करीब 20-25 साल पहले वो एक कॉपी दी थी, 25 और ज्यादा हो गए होंगे, 30-35 साल पहले। तो बाबा ने लिखा था, देखो हम सभी का भी ये अनुभव है कि मन भाग जाता है तो ऐसे तो हर कर्मेंद्री का अपना अपना वो है, लेकिन मन को ही सीधा वश करने के लिए बाबा ने क्या करा, मन को जो पत्र लिखा, कैसे लिखा बाबा ने मन को पत्र, हे मन मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, मैं राजा हूं तू मेरा मंत्री है, लेकिन फिर भी तूने मुझ राजा को अपने वश में कर लिया, मैं राजा कमजोर होता चला गया और तू मन रूपी मंत्री बलशाली होता चला गया, और तू जिधर जिधर कहता रहा मैं भी तेरे पीछे पीछे भागता रहा। फिर दूसरे पैरे में बाबा ने लिखा कि लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित होता चला जा रहा हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अब अपने स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ। ज्ञान में आने के बाद बाबा ने ये पत्र लिखा मन को, और फिर ऐसा ही पत्र बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर बना दिया। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वस्थिति रूपी सिंहासन पर स्थित हो गया। तो इस तरह बाबा ने मन को ऑर्डर किया, लेकिन ऑर्डर से पहले बाबा ने क्या किया? पहले अपने को उस स्वस्थिति के सिंहासन पर स्थित किया। ऐसे हम सब भी चाहते हैं कि हमारे पास शक्ति आए जब हम चाहें, उस वक्त शक्ति आए। कभी हमें समाने की शक्ति की जरूरत होती है, बहुत विचार इधर उधर भाग रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं समा जाए, लेकिन मन भागता रहता है, समा नहीं पाते। कभी सहन शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन हमारे ऑर्डर करने पर वो शक्ति नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम पहले अपने स्वस्थिति के सिंहासन पर स्थित नहीं होते। मानो कोई भी है, पोस्ट में है, जब तक पोस्ट में है तब तक वो ऑर्डर करेगा तो हर एक कोई उसका ऑर्डर मानेगा, और जब वो पोस्ट में नहीं है, रिटायर हो गया या ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह चला गया, तो उस जगह जहां वो पहले था वहां के लोगों को ऑर्डर करेगा, कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि वहां पर तो वो पावर में है ही नहीं। ऐसे ही अगर कोई कर्मेंद्री हमारे कहने पर हमारा ऑर्डर नहीं मानती, इसका मतलब हम पहले अपने स्वस्थिति के सिंहासन पर नहीं है। तो बाबा ने जो कहा इस तरीके से, एक तो ये बाबा ने करा, और बाकी दो बात तो वो तो आप जानते ही हैं। बाबा ने आत्मा का अभ्यास किया, लिख लिख के पक्का किया, तो वो अभ्यास भी हरेक अपना देखे। और इसीलिए हम तो बाबा से कई बार मिले, तो जब भी बाबा के पास जाते थे, बाबा ऐसे हाथ फैला, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, अब बाबा कहते थे, और बस न चाहते भी हम खींचते हुए एकदम आ जाते थे, बाबा की बाहों में समा जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा जैसे ही बाबा ने अपना अभ्यास इतना पक्का किया था, मैं आत्मा हूं, तो जिसकी तरफ भी बाबा दृष्टि देते थे वो खिंचता हुआ चला आता था, वो भी आत्म रूप में स्थित हो जाता था, और उसके बाद फिर बिल्कुल सब भूल जाता था, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ भी याद नहीं, बस खिंचता हुआ चला आता। फिर थोड़ी देर तक उस स्थिति का अनुभव करते थे, फिर बाबा ऐसा, हाँ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, स्वीट, ऐसे थपथपाते थे प्रेम से, फिर जैसे कि हम कॉन्शियसनेस शरीर में हम लोग लाते हैं। कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस जैसे धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस विड्रॉ हो जाती थी और आत्मिक स्थिति में हम स्थित हो जाते थे। और इस तरीके से फिर बस बाबा हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, एक जाता था दूसरा आता था, नंबरवार आते थे, और हरेक कोई इस विदेही स्थिति का, अशरीरी स्थिति का अनुभव करते थे। कि क्यों? क्योंकि बाबा खुद इतना आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया था, यानी कि सर्व कर्मेंद्रियों से जैसे कॉन्शियसनेस को विड्रॉ कर लेना, कर्मेंद्रिय जीत जो खुद होगा वो दूसरों को भी कर्मेंद्रिय जीत का अनुभव सहज करा सकेगा। और जैसा कि आप लोग बता रहे थे, मन तो अति सूक्ष्म है, मन की तुलना में जो वैसे तो हर एक कर्मेंद्री का अपना महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व तो किस पांच कर्मेंद्रियों में? स्थूल कर्मेंद्री का है, आंख का, जैसे आप बता रहे थे। और ये इसलिए बाबा कहता है कि अंत समय में ये कर्मेंद्री ही हमें अव्यक्त या फरिश्ता बनने में बहुत बहुत सहायक होगी। क्योंकि अंत में हमें कौन सी स्थिति चाहिए, साक्षी दृष्टा स्थिति। हमारे ही चारों तरफ हमारे लौकिक मित्र संबंधी, अलौकिक जानकार, प्रेम स्नेही जन, कोई शरीर छोड़ा होगा, कोई तड़प रहा होगा, अनेक प्रकार की स्थिति होगी, तो ऐसे में हम अपनी साक्षी स्थिति को कैसे बनाए रखें। और उसके लिए साक्षी स्थिति को बनाए रखने के लिए खास एक आवश्यक है कि ये जो आंख कर्मेंद्रिय है, और इसके लिए मुख्य पांच बातों की अगर हम धारणा कर लेंगे तो अंत समय के लिए साक्षी दृष्टा स्थिति हमारी सहज ही बन जाएगी। तो पहली बात है इसमें जो साक्षी दृष्टा का है, तो दृष्टा कौन है ना? आत्मा। आत्मा दृष्टा है, और ये आंख क्या है? ये दृष्टि है। तो आत्मा दृष्टा, मैं आत्मा दृष्टा, इस दृष्टि के द्वारा ये देख रही हूं। तो एक है दृष्टा, उसके लिए आत्मिक स्थिति, एक है दृष्टि, और तीसरी चीज है दृश्य। जो भी हम इन खिड़की के द्वारा देख रहे हैं ये दृश्य है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट अपने माइंड में हो कि मैं दृष्टा, इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हो। जो अंत समय विशेष करके जब चारों तरफ त्राही त्राही मची होगी ना, उस समय वो दृश्य हम देख रहे हैं। ट्रेन में भी जाते हैं, दृश्य आते हैं चले जाते हैं, आते रहते हैं चले जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, उस पर हम रुक नहीं जाते हैं। ऐसे ही ये तीन बात हुई। चौथी बात है कि हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कोई दृश्य देखना देखेंगे, सभी देखते हैं दुनिया वाले जिनके आंखें हैं, लेकिन हम किस दृष्टिकोण से उस दृश्य को देख रहे हैं वो हमारी स्थिति बनाता है। हमारा कहने में तो कह देते हैं पॉजिटिव दृष्टिकोण या नेगेटिव है, रियलिस्टिक दृष्टिकोण है, लेकिन जैसा दृष्टिकोण होता है वैसा ही हम दृश्य को ग्रहण करते हैं, वैसा ही वो आत्मा तक पहुंचता है, वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है, फिर वैसी ही हमारी वृत्ति बनती है। बहुत सूक्ष्म चीज है वृत्ति। एक है कॉन्शियस माइंड, जैसे हम सब अभी बैठे हैं कॉन्शियसली हम लोग बात कर रहे हैं, और एक है सब कॉन्शियस माइंड। सूक्ष्म बहुत बहुत शक्तिशाली है, और वो सूक्ष्म माइंड वो ही अंत में हमारी स्थिति को, नंबर को डिसाइड करता है। हमें याद है एक बार यहीं पर ही बाबा आए हुए थे, और बाबा ऐसे ऊपर थे और यहाँ तो बिल्कुल पास में, तब तो बैठते थे सब लोग, तब तक ओम शांति भवन बना नहीं था। तो मुरली के बाद जैसे दादियां आ जाती थी, 7-8 दादियां बैठ जाते थे, तो बाबा ने दादियों से पूछा एक बात कि 8 रत्नों में और जो 108 रत्न है उनमें क्या अंतर है कि वो 8 बन गए और 100 वाले उनकी तुलना में पीछे रह गए। तो बाबा तो नेचुरली कुछ नया ही बताते हैं। बाबा ने पूछा, दादी यहां सब शांत रहे, तो बाबा ने उत्तर दिया कि अष्टरतन वो बनते हैं जिनकी नींद में भी कमाई होती है। वैसे जो 100-108 रतन होंगे ना, सबका पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा, 8 घंटे याद की यात्रा भी होगी और भी ज्यादा होगी, सब कुछ कर्मेंद्रिय जीत भी होंगे, लेकिन जिनकी नींद में भी कमाई होगी वो अष्टरतन बन जाएंगे। तो नेचुरली दूसरों से कमाई ज्यादा हो जाएगी और औरों की तुलना में वो आगे बढ़ गए। तो नींद में भी कमाई कैसे होगी? हम सभी चाहते हैं हम सब भी अष्टरत्नों में आए। तो नींद में भी कमाई का आधार है अपने सब कॉन्शियस माइंड को, अपनी वृत्ति को हम इतना शक्तिशाली कर लें कि नींद में भी कोई और चीज को स्थान न रहे, कोई स्थूल चीज का, बाबा सेवा और यज्ञ की बातें, बस वो ही चीज रहे। मोटे तौर पर तो हम कह देते हैं रात को याद करके सो, और याद में रहेंगे तो रात भर ऐसी अवस्था रहेगी, सुबह उठते वक्त भी बाबा की याद, बाबा को गुड मॉर्निंग करके कार्य व्यवहार में लग जाएं। सही बात है, लेकिन वृत्ति सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड यही समझता है कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए, हमारे पॉजिटिव कमांड को ही वो एक्सेप्ट करता है। भाई मैं माला क्रमण का बन जाऊं, बाबा मैं विजयी रतन, आपको विजयी रतन बन जाऊं नहीं, या बाबा आपको ये करना है, ये नहीं कमांड। मैं बाबा कलप कलप की विजयी आत्मा हूं, कलप पहले भी आपने मुझे विजयी बनाया था, अभी भी विजयी बना रहे हो, और कलप कलप मैं इसी प्रकार से विजयी बनती रहूंगी। पॉजिटिव कमांड, बाबा कलप कलप की तरह अभी भी आपने मुझे जैसे इतना स्वाभिमान में स्थित किया है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जैसा कहा जाता है ना, मैं हूं बन रही हूं नहीं, या बाबा आप मुझे बनाओ नहीं, मैं आत्मा हूं ही हूं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं विजयी आत्मा हूं। तो जितना ये हमारे पॉजिटिव कमांड होंगे उतना वृत्ति हमारी शक्तिशाली हो जाएगी, और उतना उतना अंत समय जो हमारी स्थिति होगी ना, जब आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उस समय यही स्थिति होगी, पहले से ही हमें भान हो जाएगा। तो इसीलिए ये साक्षी दृष्टा में एक दृष्टा, दृष्टि, दृष्टांत, पांचवी चीज है दृष्टांत, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टिकोण और दृष्टांत। हमारे जो दृष्टांत बनेंगे द्वापर युग से, वो इसी आधार पर ही बनेंगे कि किस रीति से हमने दृष्टा बनकर इस दृष्टि के द्वारा सारे दृश्यों को देखा है, और इस रीति से हम अंत समय में बिल्कुल प्रकृति जीत बनते जाएंगे। आप सबका ग्रुप देख के मुझे एक बात विशेष याद आ रही है, और जिसको मैं अपना बहुत बहुत जीवन में जिसको संजो कर रखा है, जो आसाम से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये आसाम का ही ग्रुप है ना। हाँ हाँ, तो मैं अपना इंजीनियरिंग पास करके 67 में, और ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा यहाँ पर थे तो तब 67 की बात है, तो मेरी पोस्टिंग आसाम में हुई थी। मैं ONGC में ज्वाइन किया इंजीनियरिंग पास करने के बाद, और आसाम में शिव सागर नामक जगह है, तो वहां पर मेरी पोस्टिंग हुई। तब तक एक भी वहां सेंटर नहीं था, गीता पाठशाला नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं बाबा के पास गया कि बाबा वहां तो कुछ भी नहीं है और हमें तो बहुत कठिन हो जाएगा, मेरे पास ये दो और जॉब हैं, एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली का था, एक हैदराबाद का था रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो यहां ज्वाइन कर लेता हूं, और इतना दूर कैसे जाऊंगा। लेकिन देखो, बाबा की नजरों में आप सभी बच्चे पहले से ही समाये हुए थे, और ब्रह्मा बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, तुम्हें यहां जाना है, बाबा ही तुम्हें भेज रहा है, ड्रामा ऐसा ही बना है, बस तुम्हें तो जाके निमित्त संदेश देना है, और बाबा के बच्चे बहुत भोले भाले मीठे बच्चे बाबा का इंतजार कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, बस तुम्हें तो निमित्त बनना है। और इस तरह कह के बाबा ने सारा बैठकर, वो जैसे पहले तो ग्रामोफोन और रिकॉर्ड हुआ करता था, वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड, और तब तो चार चित्री हमारे होते थे, त्रिमूर्ति, झाड़, लक्ष्मी नारायण, चिड़ी, वो चित्र वगैरह दे करके, और नीचे फर्श वगैरह, बस बच्चे इस पर बैठ के योग करना कराना, और बस बहुत जल्दी वहां पर बाबा के बच्चे बाबा को पहचान लेंगे। तो देखो, आप लोगों ने कितना भक्ति मार्ग में भी आह्वान किया होगा बाबा का, तो इस समय जब चैतन्य में स्वयं परमपिता परमात्मा जिस रथ में आए वो भी आपका आवाहन कर रहा था, कितनी चिंता थी बाबा को कि और जगह तो सेंटर खुल गए हैं और वहां पर बाबा का घर नहीं है। बस निमित्त वहां पर जाना हुआ और हमने देखा बस निमित्त कुछ भी बोलना होता था और बाबा का बाबा अपना दीदार करा देता था, साक्षात्कार। कई बार बाबा कहता है ना, बाबा देखता है अगर समझाने वाला इतना होशियार नहीं है और समझने वाले बाबा के बहुत अनन्य बच्चे हैं तो बाबा उनमें प्रवेश करके भी ज्ञान सुना देता है। तो ऐसा कितनी बार हमने अनुभव किया और वहां से हमारा बीच बीच में टूर पर सब तरफ जाना होता था, भले हेडक्वार्टरशिप सागर था लेकिन गुवाहाटी भी आते थे, शिलोंग भी जाते थे, उधर भी जाना और आसाम में 8-10 जगह तिनसुकिया और दुलिया जान जहां जहां पेट्रोलियम का है और जगह जाना होता था, तो जहां भी जाते थे 2-4 दिन रहना होता था और कुछ, लेकिन बाबा का जैसे स्प्रेड संदेश वहां से शुरू हो गया। और बाबा ने एक बात और बोली थी कि बच्चे बाबा भेज रहा है और जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो बाबा बुला लेगा। तो इस तरीके से बाबा ने देखो कितना आपका आवाहन किया और वहां पर जाना हुआ और बहुत सेवा होने लगी। और असली बात तो मैं जो ये बताना चाहता हूं कि जनवरी 1969 का महीना था और हमें लेटर आया था देहरादून से, क्योंकि हम देहरादून से गए थे कि भाई वहां म्यूजियम बनाने की सोच रहे हैं और आप छुट्टी लेके आ जाओ। प्रेम बहन ने एक बार पत्र लिखा था तो हमने बाबा को लिखा तो और छुट्टी ली तो बाबा का पत्र आया कि हाँ बच्चे वहां जाओ देहरादून, लेकिन मधुबन आओ और प्लेन से आओ, तुरंत आओ। देखो कैसे बाबा ने इशारा दे करके हमें अपने पास बुला लिया और वहां निकले 14-15 तारीख को और 17 को यहाँ पर 17 की सुबह यहाँ पहुंच गए। हमारे लौकिक पिताजी भी हमें मिल गए रास्ते में और हम लोग दोनों इकट्ठे पहुंच गए। तो 17 और 18 तारीख को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साधारण बात थोड़ी है, अंतिम समय में जो बाबा ने कहा था, इस सबसे दूर में दूर बाबा का ज्ञान का कोई केंद्र था तो यही आसाम में ही था, इतनी दूर विदेश में तो तब कोई केंद्र था ही नहीं। और बाबा ने अपने पास बुला लिया और बस अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का हमें मौका मिला। तो मैं तो यही समझता हूँ इसमें हमारा सौभाग्य बनाने में आप आसाम वासियों का बहुत बहुत विशेष स्थान रहा है कि अंत समय में चूंकि इतनी दूर थे तो बाबा ने तभी बुला लिया। तो जो हमने अंतिम समय में देखा, क्योंकि जो प्रकृति जीत की बात वो विशेष लेना चाहते हैं, तो 18 जनवरी की सुबह बाबा ने कोई मुरली नहीं चलाई, क्लास में आके सबको योग का दृष्टि दी, सब में बल भरा। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा देखो जब आत्मा अंतिम कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो जैसा बता रहे थे अंत मते सोगते, तो अंत में कहीं भी बुद्धि न जाए तो बुद्धि जाने के और बहुत स्थान होते हैं जहां पर कुछ लगाओ झुकाओ कुछ भी कनेक्शन हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई अनफिनिश्ड टास्क, जो काम अधूरा रहा है पेंडिंग वर्क, उधर बुद्धि जरूर जाती है पेंडिंग वर्क। तो उस समय बाबा ने भी देखो ये अनुभव किया होगा, बाबा ने क्लास के बाद आते यीशु दादी को बोला जो भी पत्र लिखवाने हो लिखवा लो, और पत्र पूरे बाबा ने पेंडिंग, उस समय तो पत्र ही आते जाते थे, नहीं तो बच्चों को ये होता बाबा तो शाम को जाने ही वाले थे तो अरे मैंने पत्र लिखा और बाबा ने उत्तर नहीं दिया। दूसरी बात जो यहाँ पर हमारा नक्की लेक के पास म्यूजियम है वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी, तो पेंडिंग पड़ी थी कई दिन से, तो बाबा ने उसी दिन ही उस फाइल पर हस्ताक्षर करके कहा इस बिल्डिंग को सेवा के लिए ले लो। तीसरी बात, बाबा ने उस दिन रोज क्लास होती है 9:45 रात्रि क्लास, लेकिन उस दिन बाबा ने 7:45 ही कहा आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा और सब भोजन करके आ जाए। दोनों बात, क्लास जल्दी होगी और सब भोजन करके आ जाए, तो सब भोजन करके 7 बजे तक पहुंच गए नीचे जो हिस्ट्री हॉल है, और उस दिन वहां पर बाबा ने मुरली चलाई। तो वो बस ऐसा, वो तो बाबा की अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति की बिल्कुल मुरली थी, तो वो मुरली बाबा ने चलाई। हम भी सामने ही बैठे हुए थे और बस सामने बैठे बैठे एकाएक ही हमारे मन में जो विचार आया, संकल्प कि बाबा कुछ मेरे लिए बोले, और बाबा ने कुछ, बस जैसे ही संकल्प आया कुछ सेकंड की भी देर नहीं हुई और बस बाबा ने तुरंत ही जैसे नाम लेके कई महावाक्य उच्चार दिए हमारे लिए। और वो इस बात का प्रतीक है, जैसे भक्ति मार्ग में ना भक्त के मन में संकल्प होता है, कोई वरदान की इच्छा होती है, कोई साक्षात्कार की इच्छा होती है, तो भगवान दर्शन देके और बस तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो जाते थे। तो एक कर्मातीत अवस्था का ये लक्षण देखा, और जो हमने 17 और 18 जनवरी को 5-6 बार अनुभव किया कि बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे, बस मन में संकल्प होता था, बाबा उस संकल्प को पढ़ के, हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं रहती थी, बाबा कहते थे अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। तो ये है मन के संकल्पों पर संपूर्ण विजय, मन जीते जगत जीते। और मन जीते तब होगा जब पहले कर्मेंद्रिय जीत जो बन गया होगा वो ही मन जीते बनेगा। तो इस तरीके से ये एक तो लक्षण खास देखा जो हम सबको भी ऐसा बनना है। फिर बाबा ने मुरली चला के उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, और वो इस बात का प्रतीक है, नहीं तो 18 की सुबह 17 की शाम को कई बार बाबा को खांसी, और सर्दी का मौसम था, बहुत ऐसा वेदर था, लेकिन अंतिम समय का ये ही लक्षण है जब हम सब भी कर्मातीत बन जाएंगे, फरिश्ता स्वरूप स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, तो हमारे शरीर के जितने भोगनाएं हैं उनके ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। तो बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी। वो इस बात का प्रतीक है कि शरीर के कर्म भोग ऊपर योग बल ने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। फिर बाबा क्लास से बाहर निकले और बाबा बस दरवाजे के पास दृष्टि देते हुए, हाँ बस बाबा ने क्या कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये अंतिम शब्द थे बाबा के। कभी बाबा ने पहले कभी नहीं बोला विदा लेता है, छुट्टी लेता है, अच्छा बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग या गुड नाइट जैसे मुरली होती थी बाबा कहते थे, लेकिन बाबा छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये नहीं कहा। और फिर बाबा गए और कमरे में, जैसा आप सबने सुना ही है, दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन उसके बाद प्रकृति जीत का उदाहरण जो देखा, उसके बाद देखा कि बाबा का शरीर है, 18 जनवरी को अर्ली नाइट में बाबा ने छोड़ा था, 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर को बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही चमकता रहा, वैसा ही लाइट माइट रूप बाबा का, कोई भी दुर्गंध नहीं आई, कोई भी शरीर काला नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात, जब बाबा को हम लोगों ने स्नान आदि करा के जब अग्नि के लिए ले गए, शांति स्तंभ वहीं जहां पर अभी शांति स्तंभ बना है वहीं पर ही अग्नि संस्कार किया गया था, तो बाबा के काफी हद तक बाबा के शरीर में जैसे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी थी, नहीं तो शरीर बिल्कुल स्टिफ हो जाता है ना, और बिल्कुल चमकता शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, लेकिन 65 घंटे के बाद भी बाबा का शरीर। तो ये है प्रकृति जीत का लक्षण। हम सब भी चाहते हैं प्रकृति जीत बने, इन 5 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करे। तो वो कैसे बने, जो मैंने बताया था ना, दादी जानकी का उदाहरण दे रहे थे ना, तो दादी जी से कई बार बात होती है, दादी आप कैसे प्रकृति तत्वों को दान करते हो, योगदान करते हो, प्रकृति जीत बाबा आपको कहता है तो आप कैसे प्रकृति जीत बने। तो हम सबको भी प्रकृति जीत बनना है, 5 तत्वों को हम अपना क्या करें, मित्र बना लें। ये जो जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश है, ये इनकी, ये हमारे मित्र बन जाएं और इनके कारण हम शरीर न छोड़ें, ये हमारी मृत्यु का कारण न बने। अर्थक्वेक अगर आया और हमने शरीर छोड़ा, सुनामी आई, फ्लड आ गया, आसाम में तो बाढ़ भी बहुत आती है, अभी भी आई हुई थी, तो वो हमारे दुख अशांति या मृत्यु का कारण कभी न बने। वो कैसे होगा, जब हम इनसे अपने संस्कार मिला लेंगे। देखो दो फ्रेंड होते हैं, जिनके संस्कार मिलते हैं उनकी आपस में फ्रेंडशिप होती है, हा? तो जल से अगर हमने अपना फ्रेंडशिप कर ली, ये सब कोई तो देवता कहते हैं, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, धरती माता या आकाश देवता, इन सबको देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी देने का कार्य किया था। यही संगम है, जब इन्हें अपना मित्र हमें बनाना है तो इनको मित्र बनाने का भाव ये है। जल को अगर हम मित्र बनाना चाहे तो जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, शीतलता और एडजस्टमेंट। जल हर एक में एडजस्ट हो जाता है, गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, और चम्मच में लो, चम्मच, जिसमें भी लो, ऐसी हम में भी एडजस्टमेंट की ऐसी ताकत हो, हम हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सके। ऐसा ना कहे कि इसके साथ तो एडजस्ट होना बहुत आसान है, उसके साथ बहुत कठिन है, नहीं, सबके साथ हम एडजस्ट होके चल सकें, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो हमारे नेचर में, तो क्या होगा, जल कभी भी हमारे मृत्यु का, दुख अशांति का कारण नहीं बनेगा। जल में दूसरा गुण कौन सा होता है, ट्रांसपेरेंसी का। साफ जल होता है, उसके अंदर भी देखो सब चीज दिख जाएगी। ऐसे हमारा जीवन भी ट्रांसपेरेंट हो, कोई ये न कहे ये अंदर से है, ऐसे हैं वास्तव में, बाहर से तो दिखते ऐसे हैं लेकिन अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और है। कोई भी ऐसा कहने किया वो उसको चांस ही न मिले। अंदर बाहर जितना एक होंगे हमारी ट्रांसपेरेंट लाइफ होगी। जल का और गुण क्या है, शीतलता का, फ्रेश करने का। सुबह उठते हैं, बस योग में जाना होता है, आंख पर छींटे दी, मुंह धोया, फ्रेश कर देता है। ऐसे ही जल के ये गुण हम अपने में धारण कर लें, कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आए वो एकदम फ्रेशनेस का अनुभव करे, ताजगी का, जैसे दादियों से मिलते हैं फ्रेशनेस का अनुभव, ब्रह्मा बाबा से मिलते थे सब एकदम ताजगी का अनुभव करते थे, ऐसे ये ताजगी का और गुण है। और जल में क्या गुण है, जल में आगे बढ़ने का गुण होता है। जल बह रहा है, बहुत बड़ा पत्थर भी आ गया तो जल रुकेगा नहीं, वो इधर उधर मुड़ के अपना रास्ता बना के आगे निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हम भी, कोई भी समस्या आए, पहाड़ जैसी भी समस्या हो, लेकिन वो हमें रोकने का काम निमित्त न बन जाए, हम अपना ज्ञान का रास्ता निकाल करके आगे बढ़ते रहें, तो इसका मतलब वो जल के साथ हमने मित्रता कर ली। बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो जल के साथ अगर मित्रता होती है तो बस फिर कभी भी जल हमारे उसका कारण नहीं बन सकता। तो ये तो हमने थोड़ा सा बताया, आप और सोचना, कम से कम 10 गुण हैं जल के, और वो गुणों को हम अपने साथ धारण करते रहें। पृथ्वी है, अर्थक्वेक भी, क्योंकि आसाम तो दोनों बेल्ट के ऊपर है, अर्थक्वेक बेल्ट के भी ऊपर है, वो अर्थक्वेक का बहुत बहुत भीषण परीक्षण होने वाले हैं। तो अर्थक्वेक बेल्ट के ऊपर भी है, साथ साथ ये ब्रह्मपुत्र और इनके कारण ये फ्लड के उसमें भी चपेट में आने का ज्यादा चांस है। तो क्या होगा कि जो अर्थक्वेक पृथ्वी का मुख्य गुण कौन सा होता है, सहनशीलता, और पृथ्वी जो है दाता है, पृथ्वी देती है। देखो एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी से ही गेहूं चावल अनाज सारा फल सब्जी सब कुछ पृथ्वी से मिलता है, तेल भी सब, पानी, जीवन की सभी आवश्यकताएं धरती पूरी करती है। ऐसे ही अगर हमने धरती का ये गुण मुख्य धारण किया होगा, कौन सा, दातापन का गुण, तो कभी भी अर्थक्वेक जितना भी भीषण अर्थक्वेक होगा वो कभी भी हमें कष्ट नहीं दे सकता, बल्कि हमारे पैर धरती ऐसी टचिंग करेगी कि हमारे पैर ऑटोमेटिकली वहां बढ़ेंगे जहां पर सेफ्टी होगी। हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, बस सेफ्टी की तरफ खुद ही बढ़ेंगे। बाबा ने कहा है मैं बच्चों की रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं, लेकिन बच्चे मुझे यूज नहीं करते, आवाहन नहीं करते। हमें लौकिक मित्र संबंधी कोई याद आ जाएगा, कोई समस्या आई, बाबा याद नहीं आता। बाबा को अगर याद करेंगे ऑटोमेटिकली टचिंग वही होगी, उसका ट्रांसमीटर तो पावरफुल है लेकिन हमारे रिसीवर सेट जो है ना वो वीक है, और रिसीवर सेट में अगर नॉइस होगी तो जो सिग्नल है उसको कैच ही नहीं कर पाएगा। तो बाबा ने कहा है अब इस बात को बीच बीच में जरूर अभ्यास करते रहे कि हम, हमारी इंट्यूशन क्या कहती है, इंट्यूशन को हम पावरफुल बनाएं। जितना इंट्यूशन हमारी पावरफुल होती जाएगी उतना उतना समय पर हम सिग्नल कैच करके ऑटोमेटिकली पैर उधर पड़ेंगे। बहुत हजारों उदाहरण है, यहाँ तो समय के अभाव में हम बता नहीं सकते। यहाँ पर कहाँ, चाहे लाटूर का अर्थक्वेक आया, चाहे गुजरात का अर्थक्वेक था, चाहे मद्रास की सुनामी थी, अपने बी के भाई बहनों को ऐसे ऐसे पत्र आए कि यहाँ पर आते हैं बाबा ने कैसे समय पर हमें टचिंग दी, बिना सोचे ही हम उधर बढ़े और हमारे प्राणों की रक्षा हो। तो ऐसे धरती के भी बहुत सारे गुण हैं, सहनशीलता है, आप समझते हैं, अटलता है, लेकिन मुख्य गुण ये है दातापन का। तो हम अपने में कोई भी हमारे सम्मुख आए, प्रेम सहिष्णुता, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं देना, अनाज नहीं देना, पैसा नहीं देना, नहीं, जितना उस आत्मा को हाँ शुभ भावना, शुभकामना, प्रेम, सहयोग, उस समय अंत में आत्माएं इन चीजों की सहयोग की बहुत भूखी होंगी, तो उसको हम उस रीति से सहयोग करें। और वो सहयोग तब कर सकेंगे जब उस समय उन्हें कहने का भी मार्जिन नहीं होगा, मुझे ये चाहिए, ये शक्ति दो, नहीं, बस वो आत्मा आएगी, उनके नैनों में देखा, जैसे साकार को अंत में देखा, बाबा ने देखा, मन की बात पड़ी और बस, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा जो बाबा से हम लोगों को अनुभव हुआ वो अब हमारे द्वारा सारी सृष्टि को अनुभव होने है। हम ही तो उनके, जो बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बन गए, ब्रह्मचारी तो बन गए, अब ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मचारी पवित्र, यहाँ तो सभी पवित्र आत्माएं बैठी हैं, लेकिन ब्रह्माचारी मैं कितना हूं ये देखना है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम जो ब्रह्मा बाबा ने अनुभव कराया वो अब मेरे द्वारा सर्व आत्माओं को वो होने ही होने हैं। लेकिन मालूम तो होना चाहिए क्या क्या अनुभव ब्रह्मा बाबा ने कराए। एक ये बात धरती का हो गया, और वायु का क्या मुख्य गुण है, क्योंकि अंत समय में तो वायु भी बहुत बहुत तीक्ष्ण बहेगी, ऐसे साइक्लोन आएंगे 100, 150, 200, 250 की स्पीड वाले, सबको उड़ा के ले जाएंगे। तो वायु भी हमारे दुख का मृत्यु का कारण न बने। साइक्लोन जितने पावरफुल आए तो क्या वायु का गुण कौन सा धारण करना पड़ेगा, वायु में मुख्य गुण होता है हल्केपन का। तो पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। हर परिस्थिति में जितनी विकट परिस्थिति हो, मैं हल्का रहना सीख जाऊं, भारी ना हो, मूड ऑफ ना हो, कोई भी अनेक प्रकार के भय और आशंकाएं मन में ना आए, क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, नहीं, जो होगा अच्छा होगा, बाबा मेरे द्वारा कराएगा और बस मेरा काम है बाबा की डायरेक्शन को सही रीति से कैच करना और उसको स्प्रेड करना, दूसरों को देना। ये आप बच्चों का, हम सब बच्चों का भी ये काम है। हम दिखेंगे नहीं चाहे संसार के सामने दुनिया की रीति से, कोई ये महापुरुष है या ये है, नहीं, रीढ़ की हड्डी होती है, दिखती नहीं, लेकिन उस पर पूरे शरीर का आधार होता है, सारा शरीर उसके आधार पर खड़ा रहता है। ऐसे हम सब बच्चे रीढ़ की हड्डी हैं, पूरे समाज की, हमें पूरे समाज को ये खड़ा, और अंत में जब चारों तरफ भय और आशंका का वातावरण होगा, हमें ही जो बाबा ने थोड़े लास्ट संडे को भी कहा ना, सकाश देना है, लाइट आउट माइट हाउस बन करके सकाश देना है। तो वायु की तरह हमें हल्का रहना है। सबसे बड़ा गुण देखो क्या होता है, विपरीत गुण होते हुए भी साथ साथ रहते हैं। वायु का गुण है ऊपर उठाना, पृथ्वी का है नीचे खींचना, लेकिन जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां वायु है, दोनों सह अस्तित्व है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं। ऐसी प्रकृति में जहां सूर्य है, अग्नि है, वहीं पर ही वायु है, बादल है, ऊपर मॉइस्चर है, पानी और गर्मी, आग साथ साथ, जबकि दोनों के विपरीत गुण है। अग्नि को बुझाने के लिए पानी का यूज किया जाता है। तो हम भी परिवार में समाज में विपरीत गुणों वाले रहेंगे, किसी को कुछ अच्छा है लगता है, किसी को कोई है, विपरीत लगेगा, लेकिन आपस में टकराव ना हो, एक ने कही दूसरे ने मानी, वो है दोनों जैसे ब्रह्म ज्ञानी। तो इसीलिए ये आपस में विपरीत होते हुए भी साथ साथ रहे और प्रेम से रहे, स्नेह से रहे, सहयोग से रहे, ये प्रकृति हमें सिखाती है। प्रकृति जीत का मतलब ये है रियल सेंस में। और क्या है अग्नि के, बस अग्नि, अग्नि का प्रतीक सूर्य है। अग्नि में क्या गुण होता है मुख्य, सबको मालूम है, हाँ, अग्नि में जो चीज जालो उसका रूप बदल जाता है, हर चीज का रूप बदलने की क्षमता अग्नि में है। ऐसे ही बाबा ने कहा है, आप सर्व का भी ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप हो, योग युक्त स्वरूप हो, ज्वालामुखी योग कहते हैं ना बाबा, तो वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग, बस जो आत्मा आए, बाबा ने कहा रोती हुई आत्मा आए आपके सम्मुख आके आपका रूप देखे, बदल जाए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, दुखी आत्मा आए सुख के अनुभव में डूबती हुई वो आत्मा चली जाए, उसका रूप बदल जाए, कहने की अक्षर, एक अक्षर की भी जरूरत न पड़े, ज्ञान सुनाने का भी समय नहीं होगा। और ये प्रकृति का गुण, जब अग्नि, ये हमारी रचना है, ये प्रकृति, ये सब हमारी रचना है। आज देखो बटन दबाया, पंखा चलने लगा, हवा आ गई, किचन में गए थोड़ा बटन दबाया, माचिस दबाई, अग्नि का स्वरूप पैदा हो गए, हमारी रचना है ये सब। जब रचना में इतनी शक्ति है तो हम तो रचयिता है। इसीलिए बाबा ने कहा सदैव अपने रचयिता स्वरूप को याद करेंगे, ये स्वरूप बदलने की। अंत समय जितनी भी आत्माएं आएंगी, जैसे ब्रह्मा बाबा के सम्मुख आते थे, बस हम सोचते थे कई बार बाबा से ये पूछेंगे ये पूछेंगे, वहां जाके बस बाबा की दृष्टि ली, सब भूल जाते थे, उसी में लहराने लगते थे, वो आनंद की लहर अपनी एक अलग ही होती थी। तो ब्रह्माचारी बनने का यही रूप है। और अंत में पांचवा कौन सा प्रकृति का तत्व, आकाश। आकाश तत्व में कौन सा विशेष गुण है, विशालता, ये है एक तो बहुत बड़ा गुण, तो वो भी बहुत आवश्यक है। अभी हमारे हृदय में हम इतने फिराक दिल बने, इतनी विशालता हो कि किसी ने भी कोई हमारे लिए गलत सोचा हो, बोला हो, करा हो, लेकिन हमारे मन में उसके लिए बदले की भावना पैदा ना हो, बल्कि क्या हो, क्षमा की भावना। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो महावीर होगा वही क्षमा कर पाएगा। तो आज देखो, किसी के प्रति मेरे मन में कोई भी दुर्भावना है, बीके है, चाहे लौकिक संबंधी है या कोई मित्र है, जिसने मेरे लिए बहुत हमेशा गलत किया है, निगेटिव किया है, मैंने बहुत बार भला करने की सोची लेकिन उसका निगेटिव भाव है, तो भी हम उसे क्षमा करते हैं, तो क्या होगा, आकाश जैसी अगर विशालता हमारे मन में आ गई, किसी के प्रति भी बदले की भावना, कोई ऐसी भावना कि इसको भी हम लेसन सिखा दें, अगर ये आई तो हम महावीर नहीं बन सकते, और अगर बन गए, क्षमा का भाव सबके लिए होगा, तो क्या होगा, आकाश मार्ग से आने वाली जितनी भी आफतें होंगी वो हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकती। आकाश मार्ग से आने वाली क्या क्या आफतें हैं, हाँ? देखो, रॉकेट है, मिसाइल है, बम है, ऊपर से ही गिराते हैं ना, या क्लाउड बर्स्ट है, बादल फट जाते हैं, वर्षा आकाश ऊपर से ही आती है। तो ये अगर हम चाहते हैं कि हम अतिवृष्टि से भी बचे रहें, अनावृष्टि से भी बचे रहें, जल के प्रकोप से भी बचे रहे, तो इनके गुणों को एक एक को देख करके हमें अपने अंदर वो गुण धारण करने पड़ेंगे, इनको अपना ऐसा मित्र बना देना पड़ेगा। बाबा ने कहा ये क्या, ये तो रचना है, पहले ही जब फ्लड आने वाला होगा, ऊपर से क्लाउड बर्स्ट होने वाला होगा, पहले ही हमें टच हो जाएगा। यही तो देवताओं के लक्षण है, यही तो महावीर महान आत्माओं के लक्षण है। इसीलिए अब हमें साधारण बीके होकर नहीं रहना है, साधारण बीके तो इतने साल तक बन गए, चल दिए, अब हमें आगे आने वाली आत्माओं के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल बनना है, उनको हमारे से साक्षात्कार होने हैं, हमारे सम्मुख आएंगी, जितने हम खुद संकल्प रहित होंगे, मन जीते जगत जीत की स्थिति प्राप्त की होगी, उतना प्रकृति जीते हो जाएंगे। ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, इन पांच तत्वों के शरीर को हम अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, तभी तो क्या होगा, जब हम अपनी इच्छा से छोड़ेंगे तभी तो हम विजयी होके जाएंगे। अगर ये अर्थक्वेक अगर आया और ये गर्डर गिर गया और यहां पर हड्डी टूट गई और ब्लड आ गया और ये बहुत कष्ट हुआ, और ऐसे में अगर शरीर छोड़ा तो दुनिया में और हम में फर्क क्या रहा। अपनी इच्छा से, जो भीष्म पितामह का गायन है, बिल्कुल शैया पर सोया था लेकिन अपनी इच्छा से समय आने पर उसने, और ब्रह्मा बाबा ने भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, जितने रहे हुए कर्म थे वो सारे के सारे कर्म पूरे किए बाबा ने पेंडिंग, और अंत में भी बस बच्चों से छुट्टी लेके, विदा लेके, और शरीर के सारे हिसाब किताब निपटा के। बाबा से बच्चों ने पूछा, बाबा आप अपनी अंतिम अवस्था का वर्णन करो, आपने जब शरीर छोड़ा तो आपको क्या अनुभव हो रहा था। तो बाबा ने कहा, लिखा हुआ है सब, 21 जनवरी को जब बाबा आए थे और उसके बाद जब 13 दिन का भोग लगा था ना, वो भोग में एक दिन जब बच्चों ने पूछा तो बाबा ने बताया, बच्चे अंत समय कर्म भोग का और योग का बहुत गहन युद्ध चल रहा था। एक तरफ दर्द भी बहुत था, अथा दर्द, क्योंकि जो भी शरीर के बचे हुए कर्म भोग होंगे ना, वो अंत में सारा एक साथ आएंगे, क्योंकि यही साधन है अंत में, और क्या साधन होगा, शरीर ही पूरा का पूरा कर्मातीत बनाने के लिए ये एक निमित्त साधन है। तो दोनों में बहुत गहरी युद्ध चल रही थी, कभी कर्म भोग बहुत दर्द बहुत गहरा हो जाता था, कभी योग बल वो गहरा हो जाता था। जब अति दर्द हो रहा था योग बल, तो पहले दर्द कर्म भोग बहुत पराकाष्ठा पर था, और जब धीरे 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 योग बल वो शक्तिशाली होता गया, कर्म भोग कमजोर होता चला गया, और अंत में कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जब विजय प्राप्त कर ली ना, तो आत्मा ने जस्ट मक्खन से बाल की तरह इस शरीर का त्याग कर दिया। ये कर्मातीत अवस्था का लक्षण है, कारण कोई निमित्त बने। और बाबा तो हमेशा बोलता है ये हार्ट फेलियर सबसे अच्छा है, भाई महीनों तक सालों तक बिस्तर पर पड़े रहे, दूसरों के वशीभूत रहे, उनका सेवा लेते रहे। नहीं, अंतिम समय तक भी बाबा ने लास्ट मुरली चलाई, बच्चों को टाटा की और इस तरह विदा लेके गए। यही ममा की बात मुझे याद है। ममा ने ना जब शरीर छोड़ा, ममा का लिख करके आया था, तो ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा ने पूछा, ममा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो ममा चुप रही, जैसे ममा की आदत थी। ममा ने जवाब नहीं दिया, तो नहीं किया ना, तो ममा ने थोड़ा हिलाया कि हाँ बाबा, तो जाओ अभी तुम्हारा शरीर रखा हुआ है हिस्ट्री हॉल में, और जाओ उस शरीर में कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो ममा ऊपर चली गई थी सूक्ष्म वतन में, और फिर बाबा ने ममा को नीचे भेजा। तो थोड़े समय के बाद ममा चक्कर लगा के ऊपर गई, तो बाबा ने ममा से पूछा, ममा शरीर में गए, वहां कर्मातीत अवस्था का अनुभव किया? तो ममा ने कहा कि नहीं बाबा। क्यों? कि बाबा शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया था, उसमें कोई भी वो नहीं था, तो इसीलिए मैं गई भी लेकिन शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि कर्मातीत अवस्था का अनुभव तो हम इन्हीं कर्मेंद्रियों के द्वारा ही तो करेंगे, आंखों के द्वारा ही देखेंगे, लेकिन देखते हुए भी न देखने की स्थिति, कानों के द्वारा भी सुनते भी न सुनने की स्थिति, यही तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव है। और कई बार बाबा ने बताया जब कर्मातीत अवस्था हुई और तुरंत शरीर छोड़ दिया तो उसका फायदा क्या? कर्मातीत अवस्था होगी और उसका कुछ घंटों तक कुछ समय तक अनुभव करेंगे कि हाँ ये कर्मातीत अवस्था है, और उसके बाद शरीर छोड़ेंगे तब तो फायदा है। अगर कर्मातीत अवस्था होते ही तुरंत शरीर छोड़ दिया तो कोई लाभ नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी कर्मातीत अवस्था हो गई थी, तभी बाबा को आभास हो गया था आज मेरा अंतिम दिन है, आज शरीर छोड़ना है, तो बचे हुए सारे काम पूरे किए, बच्चों से छुट्टी ली, विदाई ली, सारे के सारे काम करके फिर बाबा अपने कमरे में गए और शरीर बाबा के हवाले, शिव बाबा के हवाले कर दिया। तो ऐसे ही ममा ने भी कहा, तो बाबा ने क्या कहा? देखो ममा, कर्मातीत अवस्था का अनुभव नहीं हुआ ना, अभी तुम्हें जाके जैसे फिर शरीर देना पड़ेगा और फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके फिर बाबा तुम्हें बुलाएगा। तो ये हम सभी के लिए भी लेसन है कि हमें इसी शरीर में ही कर्मातीत बनना है। जितना भी शारीरिक कष्ट हो, रोग हो, भोग हो, संबंधों में कटुता हो, कुछ भी हो, ये मेरा बहुत मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है, इसी के द्वारा ही मुझे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त होना है। तो कभी भी इससे हम परेशान ना हो, कंटा लेना जितना भी हो, नहीं, ये मेरा भगवान से मिला हुआ शरीर है, बचा हुआ समय, इसमें मुझे पूरी अपनी अंतिम स्थिति को प्राप्त करना है कर्मातीत। इसीलिए अभी से हम एक तो ये काम कर ले कि जो भी हमारा पेंडिंग वर्क हो ना, रहा हुआ हो, वो पूरा कर ले। कोई भी मानो विल बनानी बाकी हो, अक्सर करके यहाँ क्या होता है, एक बात बता के मैं पूरी करता हूँ कि यहाँ कोई भी बीके जब शरीर छोड़ता है तो उसके संबंधी वगैरह आते हैं, मधुबन में भोग लगाते हैं, तो कई बार ये होता है, ज्यादातर वो आते हैं, भोग लगाते हैं, उस आत्मा का आह्वान करते हैं, उसे भोग स्वीकार करते हैं जो आत्मा गई है। तो कई बार क्या होता है, वो आत्मा की आंखों से आंसू होते हैं, बाबा देखो मैं ज्ञान में भी था सब कुछ, लेकिन मैं ये सोचता रहा मैं ये करूं, मुझे ये करना है, इतना धन लगाना है, इतना तन लगाना है, मान ये सब, लेकिन मैं करता रहा, सोचता रहा कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कल करते काल खा गया बाबा, अब मैं क्या करूं बाबा। तो बाबा ने कहा, बच्चे बाबा तो हमेशा कहता रहा और ये, तो इसलिए अब हम बच्चों को, सबको ये देखना है, मानो जो अगर हम चाहते हैं विल बनानी है विल बना लें, जो भी पेंडिंग काम है जो हम चाहते हैं हमारे परिवार वाले सब ज्ञान में हो, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए जो कुछ भी जैसी स्थिति है हमारा बाबा के घर में भाग्य बनने से वंचित ना रह जाए, क्योंकि अक्सर करके ये देखते हैं जब ये होता है तो फिर जैसे बाबा कहता है खून के आंसू रोने का ना, दुनिया वाले तो पानी के आंसू रोएंगे लेकिन ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने भगवान को पहचाना भी और नहीं वो कर सके वो खून के आंसू रोएंगे। तो ऐसा ना, हमें तो ब्रह्माचारी बनना है ना, ब्रह्मा बाबा के कदम पे कदम। चलो उतना नहीं बन सके, ब्रह्मा बाबा ने तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही अपना सारा विल बहनों के नाम कर दिया, लौकिक को किसी को नहीं दिया। इतना नहीं, जितना भी हम सब कर सके नंबर वार वो करें, और फिर उसके अनुसार हम कोई भी ये ना हो जब हम जाएं तो वो चीज हमें खींचती रहे। आत्मा देखो तब तक शरीर नहीं छोड़ती जब तक कि वो आत्मा स्वतंत्र पूरी नहीं हो जाती। किसी की आत्मा अटकी रहती है बच्चे में, कहीं विदेश से बच्चा आ रहा है कहीं किसी में अटकी रहती है, तो अक्सर करके ऐसा सुनने में आता है देखो अभी तक जरूर इसको कोई वो याद कर रहा है, वो आते ही फिर आत्मा शरीर छोड़ देती है। तो अगर ज्ञान सब सुनने के बाद भी अगर हमारा भी दुनिया की तरह हाल हुआ तो क्या फायदा हुआ ज्ञान का। और अंत मते सोगते, जितने साल हम ज्ञान में चले लेकिन अंत मते अगर ये नहीं हुआ तो इसीलिए अभी अंत में हम सबको ये करके सब हिसाब किताब निपटा के और जाना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। कर्मेंद्र जी, प्रकृति जी, हमारी कर्मातीत अवस्था कैसी हो वो आपने बहुत सुंदर सहज विधि बताई, धन्यवाद। अभी सभी बैठेंगे बाबा की याद में।
यही लगन है, मन का यही कसन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह, दिल की यही लगन।